रफ़ा हाजत के मसाइल, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 30 है, मसला नंबर 18 को ही दोबारा दोहरा लेते हैं। रास्ते और साए की जगह में रफ़ा हाजत करना मना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोगो लानत के दो कामों से बचो। सहाबे कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, लानत के वो दो काम कौन से हैं? आपने फरमाया, लोगों की गुजरगाह और सायादार जगह पर रफ़ हाजत करना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो इस हदीस से इस्लाम का मिजाज समझ में आता है। और एक और हदीस जिसका खुलासा है कि ला दररा वला दरार, ना तुम किसी को तकलीफ़ दो और ना कोई तुमको तकलीफ़ दे, ये असूल बहुत अच्छी तरह समझ आता है। और इस्लाम का जो मफहूम है वो यही है कि इंसान किसी के लिए दुख और तकलीफ़ का सबब ना बने। तो लिहाजा ख़ुद कोई ऐसा काम करना या अपने जानवरों को जो पेट्स होते हैं उनके ज़रिए करवाना, बच्चों को रास्तों में फारिग करवा देना। अब रास्ते से मुराद सिर्फ बाहर सड़क का रास्ता नहीं है, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे कम्युनिटीज हॉल्स हो सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, किसी शॉपिंग मॉल में गए। और अब यहाँ तो हम कर नहीं सकते ना, लेकिन अमूमन जहाँ मौका मिल जाए तो बाहर दीवार के साथ या किसी पार्किंग लॉट में किसी ऐसी जगह पे कोई भी गंदगी फैलाना, हत्ता कि इंसान अपनी को बची खुची चीज़ें फेंक दे, कूड़ा फेंकना, ये सारी चीज़ें कम से कम एक मुसलमान का मिजाज तो नहीं होती। इसका एक बहुत आसान सा तरीका ये कि आप अपने पास एक छोटा सा बैग रखा करें। मैं जब भी कभी ट्रैवल करती हूँ बाय रोड, तो मैंने गाड़ी में भी एक छोटी सी डस्टबिन बनाई होती है, यानी एक छोटा सा लिफाफा है, अब उसको कोई एक मुनासिब जगह हैंडल है या उसके साथ लटका दें। कोई भी चीज़ रास्ते में, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, पेपर्स आपके एक्स्ट्रा हैं, वो कुछ खा रहे हैं, कोई चीज़ है जो बचे वो उसमें डाल दें। फिर जहाँ कहीं स्टॉप आप लेते हैं तो वहाँ उसको पकड़ के ट्रैश बिन में फेंक दें। हमारे यहाँ एक मिजाज है, शीशा खोला बाहर फेंक दो, पहले इधर उधर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन आप देखिए कि क्या इंसान की अपनी नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। बस इस जुमले को सोचेंगे ना, तो फिर आप हर वो काम करेंगे जिससे आप अपनी नज़रों में इंशाल्लाह ताला बुलंद होंगे। अगला मसला है, देखते हैं। इस्तंजा करने के लिए मिट्टी के कम से कम 3 ढेले या पानी इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर और हड्डी से इस्तंजा करना मना है। इस्तंजा कहते हैं रेस्टरूम यूज़ करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को धोना या साफ़ करना, ठीक है। और इसमें भी लफ्ज़ देखें तो इस्तंजा में नून जीम वाव है, नजात पाना, जैसे नजौत का लफ्ज़ है ना, यानी अपने आप को पाक करना या उस चीज़ से फ़रागत हासिल करना जो इंसान को ज़रर दे रही थी। तो 3 ढेले या पानी इस्तेमाल करना, इसकी दलील क्या है? हज़रत अनस रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो मैं और मेरी उम्र का एक दूसरा लड़का पानी का लोटा और बर्छी उठाकर आपके साथ जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ हाजत के बाद पानी से तहारत करते। इसे सही बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। इस हदीस से दो तीन बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो ये है कि उस दौर में इस तरह की सहूलत नहीं थी कि लोग घरों में ही इन चीज़ों से फारिग हो जाएं। और इसी से आप देखिए कि एक लाइफस्टाइल भी समझ में आता है। बिलफर्ज़ आप ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आज के दौर में भी घरों में रेस्टरूम ना होते और आपको कहीं बाहर जाना हो, तो क्या किसी के लिए मुमकिन है कि जितनी दफ़ा अब हम रेस्टरूम में जाते हैं उतनी दफ़ा जाएं? आप सोचें, एक ऐसी औसत दर्जे पे मैं एक दिन में कितनी दफ़ा रेस्टरूम यूज़ करती हूँ, यानी ऑफ कोर्स वज़ू या दूसरे काम अलग हैं, सिर्फ अपने आप को फारग करने के लिए। अब एक बंदा जिसको ये पता हो कि मुझे हर बार घर से बाहर जाना होगा, और उस वक्त में नबी सल्लम के दौर में औरतों का अमल क्या होता था कि जब रात का अंधेरा हो जाता था, बिल्कुल शाम का मलगजा या बिल्कुल सुबह उस वक्त जाती थी पर्दे के ख्याल से, और कुछ एक किस्म की बांट थी, मर्द उस वक्त जाएँ तो औरतें उस वक्त जाएँ, और अमूमन फिर औरतें अकेली नहीं जाती थी, एक दो खवातीन मिल के जाती थी। तो आप देखिए कि इससे खुद ब खुद फिर खाने पीने पर काबू आ जाएगा ना। हमारे पास चूँकि खाना बेहिसाब होता है तो हम उसको खाते रहते हैं, फिर उसके साथ दूसरा भी इस्तेमाल होता है, तो एक चीज़ दूसरी चीज़ का रास्ता खोलती है। आज भी आप देखिए कि दुनिया के कुछ ऐसे मुल्क हैं, मुझे किसी ने बताया और मैंने एक जगह खुद भी जाके देखा कि वो घरों के अंदर कमरों के साथ रेस्टरूम या टॉयलेट बनाना इसको नापसंद करते हैं, क्योंकि एक तो तसव्वुर वही बात कि ये गंदगी का है, हालांकि आजकल साफ़ भी होते हैं, लेकिन एक तहारत का एक जहन जब होता है तो वो इस तरह से कि रेस्टरूम के बिल्कुल अंदर ये होगी चीज़, फिर घर के बिल्कुल बाहर बनाते हैं। एक जगह मैं गई तो वहाँ घर ही दो दो तीन तीन सौ साल पुराने हैं, इवन बास बिल्डिंग्स के ऊपर लिखा हुआ है, गो के इस वक्त वो इतने रेनोवेटेड हैं कि बिल्कुल अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनके अंदर का सेटअप मुझे बहुत ही उसमें दो तीन चीज़ें अपील की। एक तो ये था कि रेस्ट रूम बिल्कुल घर के पीछे, यानी जैसे पूरे कमरे यहाँ यहाँ है ना, तो बीच में आप समझे बैकयार्ड है, ये लग बात है अब उसको उन्होंने कवर करके तो एक हॉल टाइप कर लिया, लेकिन बिल्कुल पीछे है। और बस उन्होंने मुझे बताया जो मेरी होस्ट थी कि ऐसे भी घर है यहाँ कि घर के अंदर से रेस्ट रूम में जाने का कोई तसव्वुर नहीं है, बाहर से अलग जाना पड़ता है, घर का हिस्सा लेकिन बाहर से दूर जाना पड़ता है, मिलाना पसंद नहीं करते। फिर दूसरी चीज़ उसमें मुझे उन्होंने बताई कि पूरे घर में सिर्फ एक टेलीफोन की लाइन है, स्विच है, और मोस्टली वो किचन के साथ है। फिर इलेक्ट्रिक का जो मेन, जैसे जहाँ हम अपनी ये लगाते हैं इलेक्ट्रिक का प्लग, वो भी सम ऑफ प्लेसेस पे बस एक है, हालांकि बहुत इस वक्त भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो वो क्यों ऐसा है? क्योंकि घर इतने पुराने हैं, अब उन्होंने उससे कोशिशें कर करके उसके रेनोवेशंस की। इस वक्त भी वहाँ जाके जब मैंने इंटरनेट यूज़ करना चाहा तो बहुत मुझे प्रॉब्लम हुई, क्यों? कि उसकी जो बिल्डिंग और दीवारें हैं वो कंक्रीट के और बहुत हैवी मटेरियल से बनी हुई है। तो वक्त के साथ साथ आप देखिए कि ये सब हो रहा है, और मुझे ये बात कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये तो एक सहूलत है, अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि क्या फिर अटैच बात नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, अगर आप एक घर में चंद मुख्तलिफ लोग हैं, फैमिलीज हैं, तो प्राइवेसी का मामला है, शर्त यह कि आप उसको साफ़ रखें फर्स्ट थिंग, सबसे पहली। दूसरी बात, उसका डोर लॉक करें, बंद रखा करें। बाद लोग ना समझी से डोर खुला छोड़ देते हैं, ये कभी भी ना करें, ठीक है? फिर एक और चीज़ इसमें जो मैंने देखी और मुझे किसी ने ईमेल भेजी कि ये एक सोच के एक तसव्वुर गंदा आता है ना, लेकिन एक ऐसा रेस्टोरेंट बना है दुनिया के बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हैं कि पॉपुलर कंट्री में, कि पूरा जब आप रेस्टोरेंट एंटर होते हैं ना, उसकी डिज़ाइनिंग टॉयलेट की है नहीं टॉयलेट वो ऑफ कोर्स, लेकिन जिन कुर्सियों पे बैठते हैं लोग खाना खाने के लिए, वो बिल्कुल टॉयलेट की सीट्स हैं, और जो पानी डालने की चीज़ें, लोटे, यानी बिल्कुल आप देखेंगे एक बहुत बड़े टॉयलेट में जहाँ सब लोग, और रियली इतना बैड फीलिंग आई जब मैंने देखा कि सब लोग बैठे हुए थे, तो फर्स्ट टाइम में तो यही लगता है कि लोग अपनी ज़रूरत से फारिग हो रहे हैं। ये गंदे मिजाज की अलामत होती है कि बगैर सोचे समझे ऐसी चीज़ों को इंसान अपनाने लगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि दूसरी चीज़ इस हदीस से जो पता चलती है कि एक बुज़ुर्ग या कोई मर्तबे में बड़ा शख्स है कोई भी, तो वो अपनी खिदमत के लिए साथ दूसरे को रख सकता है। अब इस हदीस से ये नहीं समझ आता कि अल्लाह के नबी ने उनको कहा था कि ये करो, लेकिन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो की अल्लाह ताला ने उनको ये अच्छी शान दी या खुशकिस्मती है कि ये नबी सल्लम के खिदमत गुजार थे। यानी कुछ लोग होते हैं जो दूसरे काम करते हैं, लेकिन ये आपके ज़ाती कामों के लिए थे। और जब नबी सल्लम हिजरत करके मदीना में आए तो हर एक ने अपना दामन खोल दिया, किसी ने किसी भी तरह से जो भी भाईचारा हुआ, लेकिन उम्मे सुलेम नाम की एक औरत थी तो वो अपने इस बेटे को लेके आई, 10 साल के थे उस उम्र में, तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा आपकी सोहबत में रहे, आप इसको अपना खादिम खास बनाएं, इनका लकब है खादिम खास, तो ये आपके साथ रहते थे और इनको अल्लाह के नबी ने इतनी दुआएं दी थी कि ये सबसे बाद में फौत होने वाले सहाबा में से हैं। जब फौत हुए तो 90+ इनकी एज थी, और इनकी नस्ल में तकरीबन 100 या 90 के बिटवीन हाफिज़े कुरान थे। तो जो बंदा साथ रहता है ना, वो दुआएं लेता है, एक बात है। फिर दूसरी बात है कि इससे इज्जत की बात भी है, पानी लेके गए इस्तेमाल के लिए, बर्छी क्यों लेके गए, सवाल पैदा होता है। इसके दो तीन वजूहात हो सकती हैं। पहली चीज़ है कि ज़मीन को थोड़ा सा उस वक्त में लोग नरम कर लेते थे, छींटों से बचने के लिए थोड़ी सी घड़ा सा खोद लिया, ताकि जब कोई इंसान फारिग हो तो उसके छींटे उसके अपने कपड़ों पर ना पड़े। फिर दूसरी वजह ये भी होती थी कि बर्छी से फिर इर्द गिर्द की मिट्टी से उस जगह को कवर कर देते थे। और तीसरी ये भी हो सकता है कि दूर जंगल था या खुली जगह थी, तो कोई जानवर अगर वहाँ हो तो नुकसान ना दे। तो इससे बहरहाल ये चीज़ समझ में आती है कि, लेकिन ऑफ कोर्स उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बीच में पर्दा होता था। एक चौथा भी मकसद बर्छी का होता था, और वो क्या था कि बाज़ दफ़ा चादरें साथ ले जाते थे, तो वक्ती तौर पे जैसे पर्दा लगाने के लिए वो सोचें कि बर्छी की जो नोक है उसके अंदर कपड़े को अटका के ज़मीन में डाल देते थे, तो गोया के पर्पस के लिए था, और उसे कई किस्म के फ़वाद लिए जाते थे। फिर अगली हदीस से कुछ और बात भी इसी की समझ आएगी। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अनहो से अज़राह तमस्खुर, यानी मजाक उड़ाते हुए, फ़न बनाते हुए उनका कहा गया, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हर चीज़ की तालीम दी है, हत्ता के पेशाब और पाखाना की भी। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अनहो ने कहा, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रफ़ा हाजत करते वक्त किबले की तरफ मुंह करने से मना फरमाया है। استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. تین پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے بھی بہت ساری باتیں ہیں سیکھنے کی. پہلی بات ہے کہ انسان کو اوفینسو ہونے کی بجائے ڈیفینسو ہونا چاہیے. اب اردو میں بولتی ہوں, یعنی انسان کو دفاعی انداز اختیار کرنے کی بجائے اقدامی انداز اختیار کرنا چاہیے. یہ بھی مشکل ہے کیونکہ نہ ہمیں انگلش آتی ہے نہ اردو آتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے اسلام کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے, اور ہم دفاعی انداز اختیار کر لیتے ہیں. نہیں 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 ایکچولی ایکچولی دس نو 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 از ناٹ دا میٹر. یہ ہوتا ہے آپ دفاع کر رہے ہیں, نہیں 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 ایسا نہیں کرو. اور دوسرا ہوتا ہے ہاں کیوں نہیں, جو بات اس نے کیا آپ اسی کو دے, ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ دیکھیں اگلا بندہ ڈھیلا ہوگا. جہاں زندگی کے کسی معاملے میں بھی, صرف اسلام کی بنیاد نہیں اور بہت سارے بھی میٹرز ہوتے ہیں, جہاں آپ دفاع پہ آ جائیں گے نا تو اگلا آپ کے اوپر چڑھائی کرے گا, اور جہاں آپ سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے نا کیا کہا, تو اگلا بندہ بالکل ٹھیک ہو کے کھڑا ہو جائے گا. کوئی بھی آپ پہ زیادتی نہیں کرے گا انشاءاللہ, اور آپ لوگوں کو زیادتی کا موقع بھی نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا قائد, رہنما, نبی اور استاد دیا کہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا. یہ ایک بے ادبی کی بات تھی, اس لیے قبلے کی طرف منہ کر کے جان کے فارغ ہونا یہ ایک درست بات نہیں تھی, کیونکہ قبلہ شاعر اللہ میں سے ہے اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے شاعر جو ہیں ان کی تم تعظیم کرو. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دو ہاتھ دیے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ہمارا ایک ہی ہاتھ ہوتا, لیکن دو ہیں تو پھر دایاں اور بایاں دونوں کو فرق کام دیے, جیسے کہ ایک کو دوسرے کے اوپر حاکم بنایا. تو دایاں ہاتھ کھانے کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ گندگی کے لیے. جو لوگ دونوں کام ایک ہی ہاتھ سے کر لیں تو آپ سوچئے کہ کہیں اگر خدا نخواستہ گندگی کا کوئی اثر ناخن میں پھنس گیا. جو لوگ سیدھے ہاتھ سے فارغ ہوں یا اپنے آپ کو صاف کرے تو اس کے بعد کوئی ذرہ ناخن میں چلا گیا اور آپ اسی ہاتھ سے کچھ کھانے لگ گئے تو سوچیے ایک بہت ہی غیر مہذب سا طریقہ لگتا ہے. پھر تین پتھروں سے کم پہ کیوں؟ اس لیے کہ تین سے کم سے طہارت ہونی ممکن نہیں ہوتی, یا کبھی کبھی انسان کا اپنا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا. پھر مٹی کے ساتھ کیوں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ مٹی کے اندر ایک تو بات یہ ہے کہ اینٹی سیپٹک ہوتی ہے. کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم سے نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کل کرنے کا جو مادہ ہے نا وہ مٹی میں رکھا ہوا ہے. یہ ایک فطری نظام تھا. صابن تو آج آئے, ہینڈ سوپ اور اس طرح کی چیزیں آئیں, لیکن مٹی میں قدرتی طور پہ جراثیم کو ختم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ مٹی ایبزاربنگ ہوتی ہے, جذب کرتی ہے. جسم سے کوئی بھی رطوبت یا گندگی نکلتی ہے تو جب مٹی سے اس کو ہم صاف کرتے ہیں تو وہ اس کو جذب کر لیتی ہے. اگلی بات کیا ہے کہ گوبر اور ہڈی سے کیوں نہ کیا جائے؟ پہلی بات ہے کہ گوبر جو ہوتا ہے سخت ہوتا ہے, اس کے اندر جذب کی کیفیت نہیں ہوتی. یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی ایک ٹھیکری آپ اٹھا کے اسے صاف کریں کچی مٹی کی جگہ. پھر دوسری بات یہ کہ گوبر بھی جانوروں کا ویسٹ ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ جرمز ہوں گے جو ہمارے جسم سے ٹچ کریں گے تو تکلیف ہوگی, اور آف کورس اس میں بدبو بھی ہوتی ہے. اور ہڈی جو ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی دوسرا جانور ہی اس ہڈی کو کھانا چاہے اور ہماری گندگی کی وجہ سے وہ دور ہو, تو اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا. اب اس سے دلیل لے کر آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا, تو بجائے اس کے الگ الگ اینڈ پہ سوال کریں, ہم ساتھ ہی دیکھ لیں کہ کیا پھر ضرورت کے وقت میں ٹوائلٹ پیپر یوز کیا جا سکتا ہے. کبھی بھی آپ پبلک پلیسز پہ ہیں, ٹریولنگ میں ہیں, جہازوں میں ہیں, کہیں بھی ہیں, تو اپنے آپ کو کیسے پاک کریں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ہم اپنے ساتھ ہر وقت مٹی رکھیں, یا اپنے پاس پانی رکھیں, یا پھر وہاں کچھ کریں؟ تو پہلی بات ہے کہ مسلمان ہمیشہ جو اس طرح کا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت کے لیے پہلے تیاری کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹریول کرنے لگے ہیں اور ٹوائلٹس میں پانی نہیں ہوگا. پانی تو ہوتا ہے بیسیکلی فلش میں, لیکن اوپن واٹر نہیں ہوتا. اس کا سمپل جو ایزیسٹ طریقہ ہے وہ تو کہ بعض لوگ کپ رکھ لیتے ہیں, بعض لوگ کوئی ایسی برتن ساتھ رکھ لیتے ہیں, لیکن ہر جگہ یہ ممکن نہیں ہوتا. بعض کہنے جی ہم تو لوٹا ہی ساتھ رکھیں گے, اب وہ کتنی جگہ وہ جائے گا اور کتنی جگہ کھلے گا, کتنے اسکینرز میں سے گزرے گا, اور آپ اس کو ہاتھ میں رکھیں گے نا, بند تو نہیں کریں گے. تو وہ بھی ایک اسلام کا ایک بیڈ امیج ہوگا. کوئی صرف اس کو دیکھ کے ہنس ہی پڑا تو سمجھے کہ اس کے دل میں اسلام کے لیے گرا لگ گئی. मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल चीज़ जो मुझे फील होती है कि जो प्राइवेट भी रहती है और उसे काम भी चलता है, जिपर बैग्स होते हैं आपके पास घरों में, जैसे प्लास्टिक के छोटे छोटे लिफाफे होते हैं जिसमें आप अपना एक्स्ट्रा खाना सेव करते हैं, सैंडविच बैग जिसको बोलते हैं, आप 5, 6, 7 भी अपने पर्स में उसको रख लें रैप करके, कोई मसला नहीं है। आपके पर्स में था, जूं ही आप गए बाहर सिंक से आप उस एक बैग को भर लें, पूरी जिप बंद कर लें। जिप से मेरा ये नहीं कपड़े वाली जिप, वो आप जो यूज़ करते हैं उनको पता है, पूरा उसका बंद करें, आखिरी कोना हल्का सा खुला होगा, जब आप यूज़ करेंगे बिल्कुल लोटे की तरह इस्तेमाल होगा, वहाँ इस्तेमाल करें और फेंक के बाहर आ जाएं, बस इतनी सी बात है। बाकी फिर इसके अलावा जैसी भी ज़रूरत हो, हाँ अगर ये कुछ भी ना हो, बिलफर्ज ये भी नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? पहली बात है कि बवक्ते ज़रूरत, यानी आप अगर पूरी तहारत कर लेते हैं नैपकिन से भी तो हो जाती है, आप अपनी नमाज ना छोड़ें उसकी वजह से कि आपकी नमाज नहीं हुई। फिर एक और उससे भी ज़्यादा चीज़ हो सकती है जो सुनने में थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, लेकिन अगर आप अकल से सोचें तो वो सही है। वो कह के जब आप अंदर जाते हैं तो मोस्टली आप देखिए कि टॉयलेट बहुत क्लीन होते हैं यहाँ, बल्कि बाद तो ऐसे हैं कि जो ही कोई यूज़ करके उठता है तो एकदम फ्लश होता है और वो ब्लू सा पानी निकल के सब जर्म्स निकलते हैं। आप कुछ भी ना इनमें से कर सकें, टॉयलेट पेपर कुछ थोड़े से लें, आप बैठने से पहले एक दफ़ा फ्लश करें और फ्लश के साथ वो नैपकिन गीले कर ले अंदर से, बिल्कुल साफ़ पानी होता है। यही अमल आप बाहर से भी कर सकते हैं सिंक से, और उस गीले नैपकिन को रख लें, थोड़ा सा खुश्क यूज़ करें, फिर एंड पे गीले के साथ करके तो अपनी तसल्ली कर लें। लेकिन इन बातों की बुनियाद बना के ये कहना कि मैं अब नमाज़ नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैंने बाहर टॉयलेट यूज़ किया था, तो ये सारी चीज़ें इसकी इजाज़त नहीं है।